ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का ये सायंकालीन विशेष सत्र बेनेडिक्टरी सेशन को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उससे पूर्व हमारे आए हुए भारतवर्ष, नेपाल एवं विश्व के अन्य स्थानों से पधारे हुए महानुभाव गणमान्य लोगों का आज इस शांति परिसर में, शांति वन परिसर में अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि परिसर का नाम है शांतिवन, मैं उम्मीद करती हूं जब से आप यहां आए हैं, शांतिवन के परिसर ने आपके तन मन की थकान को हर लिया होगा, और आप अब इस सत्र के लिए एकदम तरोताजा होंगे। आइए करें प्रारंभ इस महत्वपूर्ण सत्र का। और प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला कदम मंच सज्जा का होता है, और उसको पूर्ण करने के लिए मैं इस सत्र के सभी अनुभवी वक्ताओं को आमंत्रण देना चाहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हर चेहरे पर खुशी और हृदय में प्यार, बांटना है तुमको ये प्रभु का उपहार, तुम हो शांति के दूत इस जगत के वास्ते, हे मानव पहचानो अपने सद जीवन के रास्ते, पहचानो अपने सद जीवन के रास्ते, आमंत्रण है। और मैं सबसे पहले आमंत्रण दे रही हूँ ऑनरेबल मिसेस जस्टिस मंजू रानी चौहान एवं आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी, श्री बी एस शिवास्वामी, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, श्री चित्रंजन चट्टोपाध्याय, राजयोगिनी बहन पुष्पा जी, राजयोगी भ्राता भारत भूषण जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी आएंगे, सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और हम सभी हमारे आए हुए अनुभवी विद्वज्जनों का, वक्ताओं का अभिनंदन तालियों के माध्यम से करेंगे। सभी स्थान लेते जाएंगे। आज का ये विषय अति महत्वपूर्ण, अति सुंदर, द हार्बिंजर ऑफ वर्ल्ड पीस। आपको ध्यान होगा कल 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, कल विश्व शांति दिवस था, और आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, भारत विश्व शांति का अग्रदूत। तो आइए कोई भी कार्य प्रारंभ करें उससे पूर्व कहा जाता है शांति जीवन की कुंजी है, इसमें ही हर परिस्थिति का समाधान है, और शांति का प्रारंभ जब हम अपने भीतर में जाते हैं, अंतर मन की ओर जाते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं, वहीं से शुरुआत है, वहीं से प्रारंभ प्राप्ति है। तो चलिए कुछ पलों के लिए शांति की ओर चलें। प्रभु स्मृति में बैठकर आज का ये सत्र प्रारंभ करें।
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा। सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
कहा जाता है भारत की संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ तो प्रार्थना ही कहें शांति पाठ, जिसमें सिर्फ मनुष्य की शांति की बात ही नहीं है वरन प्रकृति के शांति की बात भी है। प्रकृति की शांति हम कहाँ करते हैं, ओम द्यो शांति अंतरिक्षा शांति पृथ्वी शांति रापा, अर्थात शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए जल में थल में गगन में अंतरिक्ष में अग्नि में पवन में औषधि में वनस्पति में उपवन में सकल विश्व में जड़ चैतन्य में शांति। हमारे यहाँ की भारत की संस्कृति इतनी महान है, हम तो सदा शांति की ही बात करते आए हैं और यही हमारे जीवन की शैली है। हम यहाँ कहा करते हैं सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, कोई भी दुख का भागी न बने, सबका जीवन मंगलमय हो। इतनी सुंदर संस्कृति के हम धनी हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और अभिनंदन करते हैं अपने अनुभवी जनों का। मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ, आएंगे पुष्प गुच्छों के माध्यम से, बैजेस के माध्यम से हमारे मंच का अभिनंदन करेंगे। बहनों से अनुरोध है, हमारे बीच विराजित जस्टिस मंजू रानी चौहान, आपका पुष्पों और बैजेस के द्वारा अभिनंदन अभिनंदन। और फिर हमारे बीच विराजित हैं साइंटिस्ट इंजीनियर बीएस शिवा स्वामी, आपका भी अभिनंदन। हमारे बीच आदरणीय जयंती दीदी जी पधार चुके हैं, आपका अभिनंदन है, बहनों से अनुरोध है, जयंती दीदी हमारे मध्य आ चुकी हैं, इनका पुष्पों के द्वारा, बैजेस के द्वारा, माला के द्वारा अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन के लिए कह रही हूँ भ्राता डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा एम्बेसडर नेपाल टू भारत, आपका भी अभिनंदन। साथ में अभिनंदन है चितरंजन चट्टोपाध्याय जी, चितरंजन चट्टोपाध्याय, डॉक्टर सतीश गुप्ता, बहन राजयोगिनी बहन पुष्पा जी, भारत भूषण जी, सभी का पुष्पों के द्वारा, बैंच के द्वारा, माला के द्वारा अभिनंदन है, अभिनंदन है। और तालियों की गड़गड़ाहट कम ना होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी उत्साह अपने में रखना, उत्साह प्रदान करना, ये जीवन शैली है भारत की, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। भारत तो सदा औरों को प्रेरणा का स्रोत बना है देने के लिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच मधुर वाणी ग्रुप सतीश भाई एंड पार्टी आ चुकी है, और गीत के बोल वैश्विक शिखर सम्मेलन में, आनंद भरे आंदोलन में, धरती गगन में, पवन चवन में, शांति वन में गुंजन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागतम में मगन मन है। तो आइए सुनते हैं ये स्वागत के बोल, स्वागत गीत, सतीश भाई एंड पार्टी मधुरवाणी ग्रुप।
ओम शांति। वैश्विक शिखर सम्मेलन से, वैश्विक शिखर सम्मेलन से निश्चित ही ये तय होगा, विश्व शांति का अग्रदूत अपना प्यारा भारत होगा, अपना प्यारा भारत होगा। पवित्रता सुख शांति की जननी बोल रहा हर जीवन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, स्वागत में मगन मन है। जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार।
वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आंदोलन में,
वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आंदोलन में,
धरती गगन में, पवन चमन में, शांति वन में गुंजन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत में मगन मन है, शुभ स्वागत में मगन मन है। आवश्यकता है सब में हो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता राजयोग से हो सुख शांति पवित्रता, परम स्रोत ने आपको दिया निमंत्रण है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत में मगन मन है, प्रभु नंदन
सम्मेलन से निश्चित ही ये तय होगा विश्व शांति का अग्रदूत अपना प्यारा भारत होगा। पवित्रता सुख शांति की जननी बोल रहा हर जीवन है प्रभु नंदन का अभिनंदन है शुभ स्वागत में मगन मन है प्रभु नंदन का अभिनंदन है शुभ स्वागत में मगन मन है। सुनाते हैं खुशियों में झूमते गाते हैं भगवान आए वो आते हैं भारत के भाग्य जगाते हैं। चंदन है प्रभु नंदन का अभिनंदन है शुभ स्वागत में मगन मन है प्रभु नंदन का अभिनंदन है शुभ स्वागत में मगन मन है। वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आंदोलन में वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आंदोलन में धरती गगन में पवन चमन में शांति वन में गुंजन है प्रभु नंदन का अभिनंदन है शुभ स्वागत में मगन मन है शुभ स्वागत में मगन मन है शुभ स्वागत में मगन मन है।
बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद बहुत सुंदर प्रस्तुति गीत की। और अब हम आगे बढ़े मुझे ध्यान आ रहा है कि भारत की संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया है सिर्फ बात विश्व शांति की नहीं हम बाहरी दुनिया में ही शांति नहीं खोजते लेकिन अंतर मन में भी शांति साथ ही साथ हम यहाँ कहा करते हैं हर कर्म ऐसा हो हर कार्य करते हुए एक शांति बनी रहे एक बात बनी रहे मन शांत हो सुखद अनुभूति अंदर हो। हम तो हर कर्म में प्रार्थना स्तुति यहाँ तक कि नृत्य में भी स्तुति प्रार्थना देखते हैं और करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए आह्वान कर रहे हैं कला वेदा एंड श्री ईशा स्कूल ऑफ आर्ट्स हैदराबाद प्रस्तुत करेंगे विष्णु स्तुति सुखलाम बारादरम विष्णम। तो हम देखेंगे स्वागत नृत्य लेकिन एक स्तुति के माध्यम से। आह्वान करती हूँ हैदराबाद से आए हुए कलाकारों का और हम तालियों के द्वारा आपका आह्वान करते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे हैदराबाद से पधारे हुए कलाकारों का, कलावेदा एंड श्री ईशा स्कूल ऑफ आर्ट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। ये सत्य है कि कार्य करने से पूर्व सवेरे सवेरे प्रभु का ध्यान कर दिन की शुरुआत करना, ये हमारी संस्कृति है, जिससे शांति का प्रभाव घर घर में हो जाता है। हमारी ये प्रथा आपस में भी जब हम मिलते हैं तो हमारे यहाँ का संबोधन सच्चे अर्थों में हेलो और हाय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का संबोधन जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। आप यहाँ पधारे हैं, हमारे यहाँ का संबोधन ओम शांति। इस तरह के संबोधन जिसमें मन शांत और प्रभु स्मृति हो जाए और आपस का संवाद सुंदर हो जाए, ये जीवन शैली है। तो आज का कार्यक्रम भी हमने प्रारंभ किया विष्णु स्तुति के माध्यम से। शुरुआत अच्छी तो कार्य आगे भी अच्छा। तो आगे बढ़ते हुए मैं आह्वान कर रही हूँ डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो कि डायरेक्टर ट्रॉमा सेंटर है, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन। आप बहुत सुंदर तरीके से, अगर मैं आपको कहूँ तो आपको लोग दिल वाले डॉक्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज की रिसर्च के लिए दिल वाले आपको लोग कहा करते हैं। दिल तो बहुत लिया करते हैं, लेकिन दिल देने वाले डॉक्टर, जीवन देने वाले डॉक्टर हमारे सामने हैं। तो आपके अनुभवों से हम लाभान्वित होंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता, मैं आगे की तरफ वक्ताओं के लिए बढ़ूं। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करेंगे अपना वक्तव्य।
ओम शांति। आप सभी भी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज के इस वंडरफुल सेशन शांति का अग्रदूत भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सुबह सुबह बहुत ही सुंदर रिसेप्शन सेशन हुआ और इसके बाद है बेनेडिक्टरी सेशन। बेनेडिक्टरी शब्द का अर्थ है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद का सेशन है जिसमें हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव, उनका आशीर्वाद सभी के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए, ग्लोबल समिट 2013 के लिए, आध्यात्मिक प्रज्ञा द्वारा एक नया विश्व बने, स्वर्णिम युग बने, उसके लिए हम सभी उसका आह्वान करते हैं। और हम सभी परमपिता परमात्मा शिव, हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा और हमारी आदरणीय श्रद्धेय दादी रतन मोहिनी जी, जो कि हमारे इस संस्था ब्रह्मा कुमारी परिवार की मुख्य प्रमुख हैं, और हमारी श्रद्धेय मोहिनी दीदी जी, श्रद्धेय जयंती दीदी जी, हमारे आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, और इस ग्लोबल समिट को जिन्होंने बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज किया है, हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर मृत्युंजय जी, और सभी मधुबन परिवार, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के सभी भाइयों और बहनों की तरफ से, पूरे मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय मेहमानों का एवं सभा में उपस्थित हमारे संतजनों का, हमारी दीदियों का, और सभी देश विदेश से पधारे सभी महानुभावों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आज की मुख्य अतिथि हमारी मंजू रानी, श्रीमती मंजू रानी जी चौहान, जो कि जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी, जो कि भारत में राजदूत हैं नेपाल के, हमारी बहुत ही पास की देश, और साथ साथ हमारे श्री चित्रंजन चट्टोपाध्याय जी, जो के चेयरमैन हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कमेटी एंड काउंसिल मेंबर ICMA दिल्ली के, और श्री BS शिवास्वामी जी, अभी अभी आपने सबने सुना कि चंद्रयान हमारा साउथ पोल पर चंद्रमा में पहुंचा। ऐसे इसरो के वो सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनको हम सभी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ साथ हमारे आज श्रद्धेय राजयोगिनी जयंती दीदी जी हमारे बीच विराजमान हैं, उनका हम सभी तालियों से स्वागत करते हैं। विदेश स्पेशली आज कल ही लंदन से पहुंचे हैं इस सभा में, और हमारे इस यज्ञ की अतिरिक्त प्रमुख हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ साथ पूरे यूरोप के जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, जितने देश हैं, उन सब की डायरेक्टर भी हैं। और हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जी जो कि दिल्ली के सभी मुख्य सेंटर्स की डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ साथ हमारी राजयोगिनी चंद्रकला जी जो आज की मंच सचिव हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे भ्राता भारत भूषण जी जो कि पानीपत में हमारा ज्ञान मानसरोवर बना हुआ है उसके डायरेक्टर हैं। तो आप सभी इस सेशन में, मैं सोच रहा था कि जो भारत शांति का अग्रदूत, शांति शब्द एज अगर मैं एक फिजिशियन के रूप में, चिकित्सक के रूप में देखूं, तो जो बीमारी शब्द है ना वो डिस ईज से बना है, डिस ईज डिजीज, डिस ईज ना लॉस ऑफ ईज। जब शांति का ह्रास होता है हमारे मन में और शरीर में तो बीमारी उत्पन्न होती है। तो भारत आने वाले समय में जो शांति और सुख की दुनिया आने वाली है उसके लिए हम सभी यहाँ पर प्रयत्नशील हैं। इसलिए सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है कि कैसे हम उस शांति को अगर हम प्राप्त करें तो इस सारे भारत को और सारे विश्व को हम सब प्रकार के रोगों से मुक्त कर सकते हैं। और एक शब्द में और कहना चाहूँगा आपको कि ये जो बीमारी शब्द है ना, बीमारी शब्द जो है बी माना डर, मारी माना बने रहना। अगर डर हमारे अंदर है तो हमारा पूरा का पूरा जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वो सारी सारी हेवायर्स हो जाती हैं। और अगर यहाँ शांति है तो पूरा का पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, सात ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो सातों के सातों ग्लैंड्स वो हमारे 80,000 कोशिकाओं से बने शरीर को संचालित करती हैं। तो उसका एकदम सारे शरीर में हार्मनी हो जाती है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। और हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि स्वस्थ शब्द, अगर हम स्व माने आत्मा, अस्थ माने स्थित, अगर हम सभी आत्मिक स्थिति में स्थित रहें तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, क्योंकि आत्मा अजर हमारा विनाशी है और हम इस विश्व को सिंपल एक शब्द से ही रोग मुक्त बना सकते हैं, इस नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हम रोग मुक्त रह सकते हैं, कैसे भय मुक्त बन सकते हैं, अपनी मनोस्थिति को आत्मिक स्थिति में बदलते हैं उसके द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई जी का। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दे रही हूँ हमारे बीच विराजित श्री चितरंजन चट्टोपाध्याय जी, जो कि चेयरमैन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कमेटी एंड काउंसिल मेंबर ऑफ ICMA दिल्ली। आपके पास 35 वर्षों से भी अधिक बैंकिंग का अनुभव साथ है, इतनी गहराई लिए हुए आप हैं। मेरा आपसे अनुरोध है आप अपनी ग्रीटिंग्स रखें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार, मैं इंग्लिश में बोलूंगा क्योंकि मैं कंफर्ट फील करूंगा आपके साथ इंग्लिश में बोलने से। सभी को प्रणाम। I am very grateful for having been invited here. My heartfelt greetings of peace to Brahma Kumari's sisters and brothers, all the dignitaries present on the stage, and all my brothers and sisters in audience. I'm really fortunate to be present here in this land where the largest woman-led spiritual movement began for a peaceful world. This is the place where spiritual empowerment of personal evolution begins. I am overwhelmed to be amongst volunteers dressed very simple in white but adorned in high spiritual knowledge. I see them performing their service with perfection and love for the One Supreme. Whenever I step in this land, I feel I am far beyond the issues of the world. Myself being from the cost and management accounting fraternity, let me share a few words on the profession of cost and management accountancy. On 28 May 1959, the institute was established by a special act of parliament, namely the Cost and Works Regulation Act 1959, as a statutory professional body for the regulation of profession of cost and management accountancy under the administrative jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs. Of course, we have 4 regions, 112 chapters, 11 overseas centers, and more than 90,000 members. And cost and management accountants play a crucial role in the changing business ecosystem by providing valuable financial and non-financial information to support decision making and improve the overall performance of an organization. The key roles that they play in the evolving business landscapes are cost analysis and control, strategy planning, performance management, risk management, decision support, technology integration, sustainability reporting, compliance and governance, cost allocation in the new business models, scenario analysis, continuous learning and adaptations, contribute to green and clean technology, and participation in sustainable and inclusive growth and development of the economy. Cost and management accountants are essential strategic partners for organizations in adapting to and thriving in the changing business ecosystem. Their ability to provide accurate and timely financial information, coupled with their analytical skills, helps business make informed decisions and remain competitive in dynamic markets. In today's world, the major socio-economic crisis that we see and face is large poverty concentrations, fewer options for employment, neighborhoods that lack social order, high family disturbance, low levels of community involvement, and violence encouraging social and cultural norms disrupting the peace of life. We are heading towards a world where the needs of the future generations are getting jeopardized because of the mismanagement of resources and human greed. Mahatma Gandhiji said, "The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed." My association with this esteemed Prajapita Brahma Kumari's World Spiritual University have made me realize that it has solution to all such emerging problems. This university is the one socio-spiritual education institute where it is committed to the cause of moral and spiritual upliftment of mankind. its philanthropic services of imparting spiritual knowledge and teachings of simple and easy Raja Yoga meditations can eradicate greed, violence, poverty, and unemployment. It has ascertained that tension and suffering arise when the spirit of cooperation, sympathy, brotherhood, and selfless love are diminished. These major challenges can be addressed by following a simple process of self-realizations and reconnecting with the source. Choosing creative thoughts rather than ordinary thinking, peace, love, and harmony in place of stress, conflict, and chaos. Objective of the Brahma Kumaris organizations is to bring world transformation through self-transformations, and I really congratulate the organizations for carrying out this objective worldwide and convey my best wishes for establishment of peace and harmony around the globe. Keeping in mind this today's session in Benedictine session, we have learned that four ages, Golden Age, Silver Age, Copper Age, and Iron Age, and Bharat will be the leader who will be bringing back the Golden Age from Iron Age to, from Iron Age. And I am sure the harbinger of gold, world peace will be attained by Bharat only through the Brahma Kumari. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता चित्रंदन चट्टोपाध्याय जी, आपने सार में बहुत गहरी बातें कह दी और अंत में यही बताया भारत विश्व का अग्रदूत संस्था की मदद के माध्यम से बनेगा, जो कि यहाँ के मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी, जो शिक्षाएं हैं, कलयुग से सत्युग बनाने में स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच विराजित डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, जो कि वर्तमान में इकोनॉमिस्ट एंड डिप्लोमेट, एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया, आप हमारे बीच हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप आगे आएंगे। आपने गवर्नमेंट ऑफ नेपाल में प्रशासन में, इंटरनेशनल संस्थाओं में, इकोनॉमिक रिसर्च में भी काफी मदद की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल के ड्राफ्ट बनाने में भी आपकी काफी मदद है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपने अनुभवों से दिशा दें।
ओम शांति एंड नमस्कार। नेपाल से आने के बाद हिंदी में थोड़ा बोल तो सकती हूँ, लेकिन मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ा अंग्रेजी में बोलने के लिए अनुमति चाहता हूँ। आदरणीय ऑनरेबल मिसेस जस्टिस मंजुराणी चौहान जी, आदरणीय राजयोगिनी बी के जयंती दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, डायरेक्टर ट्रॉमा सेंटर, श्री चित्तरंजन चट्टोपाध्याय जी, श्री बी एस शिवस्वामी जी, नेपालबाट आउनुभएका विशिष्ट अतिथिजीहरू तथा अन्य विशिष्ट अतिथिगणहरू, आई एम ग्रेटफुल एन्ड अनर्ड टु बी एबल टु पार्टिसिपेट इन दिस ग्लोबल समिट ऑर्गनाइज बाई द ब्रह्म कुमारी। It's really exciting for someone like me to be here. I want to sincerely thank the Brahma Kumaris for the invitation and for offering me such wonderful hospitality. We all know that Brahma Kumaris is a unique, spiritual, value-based educational institution. The institutions created by it are dedicated to the goal of establishing value-based society and global peace. Their focus is on developing human potential, bringing harmony to human relationship, and changing the attitudes and outlooks of people to promote the spirit of brotherhood, love, and cooperation. The institution is open to all, irrespective of their caste, creed, age, social, economic and political status. They give people knowledge of their true identity and meditation by which one can become free of stress, anger and other negativity that causes conflicts in the society and the family. They provide guidance in instilling moral values and divine virtues that enable individuals to experience lasting peace and bliss. The teachings encourage and facilitate the development of spiritual awareness through a process of lifelong learning. The Brahma Kumaris work with a spirit of dedication and sacrifice for the welfare of the society. Brahma Kumaris is a worldwide spiritual movement dedicated to personal transformation and world renewal and attaining the peace. Founded in about 1937, now Brahma Kumaris has spread over to 140 countries on all continents and has had an extensive impact in many sectors of the as an international NGO. However, their real commitment is to helping individuals transform their perspective of the world from material to spiritual. It supports the cultivation of a deep collective consciousness of peace and of the individual dignity of each soul. Brahma Kumaris has served in Nepal for over the last 50 years. We have seen a large contingent of Nepali people participating in this global summit. They work in the socio-spiritual domain and have established themselves well in all parts of the country. Its service started in eastern Nepal, but now has grown and spread to different parts of the nation. It is serving through more than 1,000 centers from far east Mechi to far west Mahakali. Very recently, we at the Embassy of Nepal in New Delhi celebrated our National Day on September 20th, 2023. The Brahma Kumaris supported us in bringing Nepali artists from Nepal to present a cultural show on the occasion. We would like to express our deep gratitude for the support provided by Brahma Kumaris for the superb cultural presentation by the Nepali artist to the diplomatic community, friends and dignitaries from Nepal. That's the kind of the Brahma Kumaris in Nepal and their involvement. The theme of this year's summit, Sukhamaya Swarnim Sansar, Prosperous Golden World, is very timely. Spirituality and prosperity are often intertwined. But it's important to note that prosperity can also be experienced at different levels. Success in education and our spiritual growth may also help people to attain a different form of prosperity, which is more sustainable than the material prosperity. Prosperity in the spiritual life may also be derived from gratitude, meditation, prayer, acts of kindness, positive affirmations, generosity, and also learning. By embarking these practices with sincerity and an open heart, you may experience a deeper sense of spiritual prosperity, but they need to be adopted to our personal beliefs and values. I would like to congratulate Brahma Kumaris once again for their philosophy and dedication to peace and the overall socio-spiritual development of humanity. You are the best institution to discuss the theme issue for this year. With these few words, I wish the Global Summit a grand success. Dhanyabad, Om Shanti, and thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता शंकर प्रसाद शर्मा जी. और अब मैं आगे बढ़ते हुए उस महान विभूति की ओर बढ़ रही हूँ जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम है. आदरणीय राजयोगिनी बी के ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है यूरोप तथा मध्य पूर्व देशों में. ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों की वो डायरेक्टर भी हैं. आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में 50 वर्ष से अधिक वर्ष हो चुके हैं उन्होंने अपना जीवन आत्म परिवर्तन मानव की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है। जयंती दीदी जी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में ब्रह्मा कुमारी एनजीओ की भी प्रतिनिधि हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण महिलाओं के उत्थान धार्मिक संवाद स्वास्थ्य भलाई अन्य अन्य विषयों पर आप सम्मानित सार्वजनिक वक्ता हैं। उन्होंने लाखों लोगों को दुनिया में प्रेरणा दी है। वो एक न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण दुनिया बनाने आध्यात्मिक सिद्धांतों को राजनेताओं अर्थशास्त्रियों व्यापारिक नेताओं वैज्ञानिकों समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं उनको इन शब्दों के साथ आमंत्रण देना चाहूंगी। संतुलन व्यक्तित्व में समाधान बुद्धि में उत्साह मन में कर्मठता संस्कारों में सहयोग भुजाओं में मुस्कान चेहरे पे लगन हृदय में निरंतर गतिशील चेतना की वो अग्रदूत हैं। ऐसी महान कोहिनूर भगवान की आपका मंच पर अभिनंदन के साथ साथ मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपकी ब्लेसिंग्स एक एक शब्द हम ध्यान से अपने जीवन में उतारेंगे सुनेंगे अपनाएंगे।
Om Shanti. Your Excellency, honored guests, your holy sages and saints gathered here, and my brothers and sisters, aap sabhi ko yahan ke hazri mein bahut bahut swagat hai. Mujhe aasha hai ki हर प्रकार से आपको सुविधाएं प्राप्त हुई होंगी और यदि कुछ भी और आवश्यकता हो आप अपना घर ही समझ करके आप अवश्य ही बता देना तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी संभव हो जाएगा। बाकी आज का जो विषय है इतना सुंदर और लगता है कि हाँ सचमुच भारत की का जो इतिहास है उस अनुसार भारत ने विश्व स्टेज के ऊपर इतना सुंदर पाठ बजाया है और कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स तो जो कुछ पूर्व में हो चुका मुझे लगता है अवश्य और भी आगे वही इस प्रकार से संसार आने वाला है। जब हम छोटी थी तो विदेश में हम लंदन में अपने पेरेंट्स के साथ 1957 से रहते हैं तो उस समय 50s और 60s में भारत के लिए कुछ और प्रकार की दृष्टि होती थी परंतु कुछ समय से आप जानते हैं भारत का सितारा ऊंचा उड़ते उड़ते अभी बिल्कुल ऊंच स्थिति पर पहुंच चुका है और जिस तरह से G20 समिट का सारा कार्यक्रम यहाँ सुख शांति से संपन्न रहा उससे भी लगता है कि भारत बहुत कुछ कर सकता और आगे भी बहुत कुछ करने की उम्मीद है। उसमें भी एक सौगात मिली थी जो भी पार्टिसिपेंट्स आए थे उस मीटिंग के अंदर उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया गया था कि इतिहास के अनुसार भारत में किस किस प्रकार की बातें होती थी उसमें साइंस के हिसाब से फिलॉसफी के हिसाब से मेडिसिन के हिसाब से आर्किटेक्चर के हिसाब से आर्ट्स और कल्चर के हिसाब से वो कई बातें उसमें वो बता रहे थे। एक पुस्तक था उसमें सब वो चीज़ें दिखाई गई थी कि भारत की जिस घड़ी सिविलाइजेशन कुछ हजारों वर्ष पहले थी वो किस प्रकार से थी और जहां यूरोप में अब तक स्टोन एज माना गया था, भारत का तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर सिविलाइजेशन उस समय हाजिर था। आप सोचो कि जब शांति होती है कोई भी देश में, तो ये सब जो और बातें होती है उसका संभावना होती। जहां शांति नहीं होती, जब अशांति होती, तो मानव के अंदर कोई आर्ट और कल्चर और आर्किटेक्चर और मेडिसिन की प्रगति, आदत, उन बातों के लिए समय ही नहीं मिलता जो हम उन बातों पर कुछ विचार करें और कुछ और आगे अपना कार्य बढ़ाएं। परंतु जब शांति की भूमिका होती, उस शांति की भूमिका के आधार पर ही ये सब बातें संभव है। और ये सब बातें जो उस पुस्तक में बताई गई थी, ये तो मुझे लगता है कि करीब 2500 वर्ष के इतिहास की बातें थी। परंतु भारत का इतिहास सिर्फ इतना तक नहीं, भारत का इतिहास 5000 वर्षों का हिसाब है। तो आप सोचो कि जो अभी हमारे पास प्रैक्टिकल जो रेमिनेंस हम देखते हैं, साइंस देखते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो तो सिर्फ मैक्सिमम मुझे लगता है जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो द्वापर युग से ही हमें प्राप्त है। परंतु मुझे लगता है कि जो यहाँ बैठे हैं वो मानेंगे कि भारत का इतिहास सिर्फ द्वापर युग का नहीं है। भारत का इतिहास कब का है? कब का है? सतयुग। हम कहेंगे कि सतयुग से लेकर भारत का इतिहास हमारे पास है। सतयुग में क्या नहीं होगा, यदि ये सब कुछ जो हमें प्रूफ मिलता है द्वापर में सब कुछ, इतना सब कुछ था, तो फिर भारत के अंदर सतयुग में क्या नहीं होगा। जबकि शांति थी तब तो वहाँ पर पवित्रता, सुख, हर प्रकार से संपन्नता थी, और वो सब बातें धीरे धीरे चलती रही चलती रही। परंतु कुछ समय आया जबकि कुछ जीवन का परिवर्तन हुआ, और फिर त्रेता आए, फिर द्वापर भी आया, और अब कौन सा समय चल रहा? अब तो कहेंगे कि कलयुग का ही समय चल रहा। परंतु कलयुग के अंतिम चरणों में भी हम देखते हैं कि भारत का सितारा और ऊंचा बढ़ता जा रहा। तो हमें बहुत बहुत खुशी है कि सचमुच अभी लग रहा है कि आगे के लिए रास्ता शांति का किस प्रकार से है, वो भारत द्वारा ही विश्व को अवश्य ही प्राप्त होगा। उसमें भी आप सोचो कि जहाँ पर माताओं देवियों की पूजा होती, जहाँ पर 100 वर्ष पहले की ही एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, दादी जानकी के साथ हमारा रहने का 40 वर्ष का संबंध रहा, उसको तो मैं बचपन से ही जानती थी, तो करीब 65 ईयर्स से लेकर मैं उसको जानती थी। उसका अव्यक्त होना कुछ 2 वर्ष पहले ही हुआ था, तो वो भी यहाँ के चीफ प्रशासिका होकर के रही थी। परंतु वो हमें कहानी सुनाती थी अपने बचपन की। कहती थी कि जो पिताजी थे उनको तो ज्वेलरी का धंधा कारोबार चलता था, परंतु उनके दादे परदादे सबके जो जमीनें थी, खेतियाँ थी, बगीचे थे, वहाँ पर बगीचों में साधु संतों को रखा जाता था, और वहाँ पर जो कुछ धरती का अनाज निकलता था, फल आता था, जो कुछ वो प्रोड्यूस होती थी वो कभी बिक्री नहीं होती थी, परंतु उसको किस प्रकार से बांटा जाता था? हर रोज जो दूध अथवा फल या जो कुछ भी होता था भोजन की बातें, वो पहले हिस्सा जाता था साधुओं के पास, जो उनके बगीचे में कुटियाएं बनी हुई थी जहाँ वो रहते थे, और फिर उसके बाद कहाँ जाता था? उसके बाद जाता था जानवरों के लिए, जो गैयाँ हैं, जो मछलियाँ हैं आदाद, उसके बाद फिर जाता था जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, फिर उसके बाद जाता था जो घर के पुरुष भाई लोग हैं, और फिर होता था माताओं का टर्न। तो कहने का मतलब कि 100 वर्ष पहले की कहानी में भी भारत के अंदर ये भावना होती थी कि जो धरती माँ से हमें प्राप्त होता वो सबके साथ बांटा जाए, और जो कुछ बचता था वो बाकी जो वहाँ के सेवाधारी थे, कर्मचारी थे, उनों को फ्री बांटा जाता था। तो आप सोचो, भारत की इतनी बड़ी देव जिस आधार पर ये भावना कि सब सुखी रहे, क्योंकि जहाँ पर बड़ी दिल होती है वहाँ पर हरे के साथ शेयर करने के लिए भावना होती, जिस कारण से महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि इतना है सब कुछ विश्व के अंदर, देयर इज इनफ फॉर एवरी वन्स नीड्स बट नॉट सफिशिएंट फॉर इवन वन पर्सन्स ग्रीड। तो भारत की ये प्रैक्टिकल कहानी है, और न सिर्फ 5000 वर्ष पहले की बात परंतु 100 वर्ष पहले की भी कहानी, कि हरेक के साथ बांट करके अपनी बड़ी दिल रख करके सब कुछ शेयर करें ताकि हरेक सुखी रहे। तो जब बड़ी दिल होती है तो उसमें हम देखते हैं कि जेनरोसिटी भी है, औरों के प्रति कंपैशन भी है, और सबके लिए ये भावना होती कि उनों की भी उन्नति रहे, मैं आगे बढ़ूं की भावना नहीं परंतु और मेरे से आगे बढ़े। और यदि औरों को हम मदद करते हैं और आगे बढ़ने के लिए, उससे मुझे भी उसका शेयर कुछ मिल जाता। और परमात्मा के लिए तो अत्यंत प्यार, हर एक के लिए ये भावना कि परमात्मा का संतान है, जिस कारण से जो G20 की सारी तैयारियां चल रही थी, वासुदेव कुटुंबकम का नारा लगा रहे थे, एक ही परिवार है विश्व। मुझे नहीं लगता है कि जितना भारत इस बात को हजारों वर्ष से मान करके चल रहे हैं कोई और देश इस तरह से होंगे। मुझे एक कहानी भी सुनाते हैं कि कोई भी ऐसे कौम नहीं होंगी जिसको भारत ने अपना रेफ्यूज न दिया होगा, असाइलम न दिया होगा। चाहे वो यहूदी थे, वो आए भारत के अंदर, उनको भी वेलकम करके बुलाया गया। जब वर्ल्ड वॉर टू में रेफ्यूजीज आ रहे थे पोलैंड से, उनको भी प्यार से स्वीकार किया गया था। बहुत वर्ष पहले जब यहाँ पर पारसी लोग आए, उनको भी अपने देश से निकाला गया, उनको भी यहाँ पर असाइलम मिला। तो हमारे देश के अंदर ही इतनी श्रेष्ठ भावना है कि हम सब एक है, हम सब एक परिवार के हैं, अथवा हम सब एक परमात्मा के संतान है। तो आप सोचो, बीच में कुछ समय के लिए जब कलयुग का समय चल रहा था, अभी भी चल रहा है, परंतु थोड़ा सा हमारा ध्यान आध्यात्मिकता से हट करके भौतिकवाद में चला गया। साइंस की भी जो प्रगति हुई है तब होती जबकि साइलेंस होती। तो साइंस की प्रगति से तो बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा और आगे भी हो सकता। तो मैं ये नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी या साइंस ना हो, परंतु जो मटेरियलिज्म आ गया है, कंस्यूमरिज्म आ गया है, जिसके अंदर हम सब बिल्कुल जकड़ के चल रहे हैं, इस हिसाब से यदि हम फिर से आध्यात्मिकता की जागृति करें तो आप सोचो, भारत के अंदर वो क्षमता है जो भारत के अंदर यदि शांति आए तो विश्व भर में हम शांति फैला सकेंगे। और भारत के अंदर कैसे शांति आएंगी, जब हर व्यक्ति के अंदर वो पहचान होंगी कि मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जैसे बहन जी बता रहे थे कि यहाँ पर जब कोई भी मिलते हैं तो उनों के साथ कुछ प्यार से परमात्मा की याद के शब्द बोले जाते हैं, और उसमें भी खास यहाँ हम कहते हैं ओम शांति। तो ओम, मैं कौन हूँ, मैं हूँ आत्मा, मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ, मैं हूँ शांत स्वरूप आत्मा। तो जब जो भी यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, यदि इस बात का दिन भर न सिर्फ बोलने मात्र या न सिर्फ जिस घड़ी प्रार्थना करते हैं या योग में बैठते हैं, परंतु हर घड़ी इस बात को जीवन में अमल में लाएं, धारण करें कि मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ शांत स्वरूप। तो इस स्मृति से आप सोचो कि हमारी वृत्ति हर एक के प्रति किस प्रकार की होंगी। हम एक दो को उस वृत्ति से देखेंगे कि हाँ, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारी बहन है। तो उस स्मृति से वो वृत्ति हमारी दृष्टि, हमारे दृष्टि में और कोई बात नहीं आएंगी, ये गोरा है, ये काला है, ये चीनी है या पीला है, नहीं। हमारी दृष्टि में आएगा कि ये भी आत्मा, आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु, यहाँ चमकता है सितारा, यही आत्मा है जो हर एक अपने आप से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, उस आत्मिक दृष्टि से करते हैं। उस दृष्टि से, उस कृति, उस कृति के द्वारा उस संस्कृति, उस संस्कृति के द्वारा वही सृष्टि। अपने भाई कह रहे थे कि जिस तरह से यहाँ वॉलंटियरिज्म है, अथवा जिस तरह से सेवा भाव से सब प्यार से सेवा कर रहे हैं, आप देखेंगे कि मन में जब परिवार की भावना होती तो उसमें ये नहीं गिनती किया जाता कि मैंने आपके लिए ये काम किया, अभी आप मेरे लिए ये काम करो, नहीं, वो तो एक बिजनेस हो जाता, व्यापार हो जाता। आप एक दो तो मैं एक आपसे ले सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, ये लेन देन एक बिजनेस है। परंतु जब परिवार की भावना है और जब सेवा भावना है कि न सिर्फ हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, परंतु ये परमात्मा की संतान है, परमात्मा के बच्चे हैं, तो जब उस भावना से हम उस प्यार से सेवा करते हैं तो उसमें सेवा भी सेवा नहीं लगती, एक लगता कि भाग्य है, कि भाग्य है कि आप हमारे घर में पधारे, आप इतने मेहमान देव रूप में हमारे पास आए, तो भावना ही कुछ अलग हो जाती। तो परमपिता परमात्मा शिव ने जब से परमपिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस यज्ञ की स्थापना की, आप सोचियो कि कोई भी यज्ञ होता एक मास चलता, उससे अधिक तो नहीं होता, जितना भी बड़ा यज्ञ हो उसमें 100,000 होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। परंतु जैसे ही 14 वर्ष की तपस्या जो पहले अपनी दादियाँ और दादाओं ने की, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी तपस्या जो रही, फिर उसके बाद भारत में पहुँचे 1950 में, और उसके बाद में 1951 से लेकर जो कुछ उन्होंने अपने में परमात्मा के द्वारा ज्ञान और योग की शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में धारण की, वो फिर विश्व के कोने कोने में, पहले भारत के कोने कोने में और फिर बाद में विश्व के कोने कोने में जाते रहे। और जहाँ जाते थे वो क्या काम करते थे, बस यही आत्मस्मृति, परमात्मा की याद की जागृति, यही संदेश देते रहते थे, जिससे अनेक आत्माओं को प्राप्ति होती रही। तो आज 1 मिलियन से अधिक अपने पास ऐसे सरेंडर बुद्धि वाले भाई बहने होंगे सारे विश्व के अंदर, जो कहेंगे कि हाँ, हम अवश्य ही ओम शांति का मंत्र लेकर के अपने जीवन में धारण करके चल रहे हैं, राजयोगी जीवन प्राप्त करके चल रहे हैं, जो भी उनका करियर है, जो भी उनका प्रोफेशन है, वो सब कुछ करते, परंतु उसमें नवीनता क्या है, परमात्मा की स्मृति। क्यों? क्योंकि जब हम कर्म योगी कहते हैं, राजयोगी का दूसरा अर्थ भी है कर्म योगी, तो जो कुछ हमारी कर्म है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब कुछ करते परंतु बुद्धि की याद परमपिता परमात्मा के साथ वो तार जुटी रहे, ताकि फिर उसके द्वारा वो शक्ति मिले, जो उस शक्ति के द्वारा कोई भी बात सामने आती है सहन भी कर सकती हैं, परंतु जहाँ हमें सामना भी करना पड़ता है सत्यता के लिए वो भी कर सकते, परंतु दूसरी बात कि बुद्धि इतनी क्लियर रहती जो हमें पता चलता कि अब इस घड़ी मुझे क्या करना है। तो आप सोचो कि यदि राजयोग द्वारा अपनी बुद्धि के अंदर ये परिवर्तन आता कि अब मुझे न सिर्फ कर्म करना है, हाँ ड्यूटी संभालनी है वो अवश्य, परंतु साथ ही साथ मुझे परमात्मा के साथ योग लगा करके उस शक्ति के आधार से सब कुछ करना है, तो आप सोचो ओम शांति एक रियलिटी बन जाती और उस द्वारा शांति वास्तव में इस संसार में अवश्य ही आती। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब अंधेरी रात संपन्न होने समाप्ति होने पर आ रही है और उसके बाद स्वर्ग की दुनिया, सत्यता की दुनिया, सत्युग की दुनिया, जहाँ एक शांति के आधार से ही हरेक अपने आपस में व्यवहार करेंगे, वो शांति की दुनिया इस धारा पर अवश्य ही आएंगे। आप सभी के सहयोग से मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ही संभव है और जल्दी ही भारत के अंदर ये हम कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। आत्मिक भाव की आवश्यकता है, परमात्म स्मृति हर कार्य में बनी रहे, स्वतः शांत मन होगा, चित्त शांत होगा, कार्य अच्छा होगा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं फेलिसिटेशन की ओर। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानों के लिए उनका सम्मान, मैं आदरणीय दीदी जी से नम्र अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मेहमानों का सम्मान करेंगे, साथ ही साथ हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी भ्राता मृत्युंजय जी हमारे बीच आ चुके हैं, आप भी सम्मान करेंगे। सबसे पहले मैं बुला रही हूँ आगे की तरफ बढ़ने के लिए कुर्सी पर हमारे बीच बैठे हैं श्री बी एस शिवास्वामी, सीनियर साइंटिस्ट इंजीनियर इसरो से। आप आगे मंच पर, आपके लिए कुर्सी है, आप आगे स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई, आदरणीय राजयोगिनी दीदी जयंती जी आपका सम्मान कर रही हैं, सहयोग हमारे अन्य भाई बहने दे रहे हैं और हम सब सम्मान में तालियां बजाते रहेंगे। आप देख रहे हैं शॉल पहनाकर, माला पहनाकर, साथ ही जिम्मेवारी की निर्वाह का जो पगड़ी वो भी पहनाई गई है और अब मोमेंटो आपको दिया जा रहा है। आदरणीय दीदी जी आपको मोमेंटो प्रदान कर रही है और आदरणीय भ्राता रतनजय भाई जी भी आपको मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं और हम पुनः आपका तालियों के द्वारा ये सम्मान हम भी आपको यहाँ से दे रहे हैं। प्रसाद, प्रभु प्रसाद, ये प्रभु प्रसाद, इसके लिए हम हमेशा कहा करते हैं जितना अंदर में जाता है उतना ही मन सरल स्वच्छ साफ हो जाता है। और अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय जयंती दीदी और मृत्युंजय भाई जी से कि अन्य मेहमानों का भी इसी तरह आप सम्मान करेंगे। हमारे बीच ऑनरेबल जस्टिस मंजू रानी चौहान, आपका भी सम्मान है, हमारे बीच आ चुके हैं और आपको शॉल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। ये शॉल, ये माला, ये प्रभु दरबार में यह सबसे बड़ा अभिनंदन है आपको, साथ ही साथ न्याय की पगड़ी सिंबल और साथ ही परमात्मा शिव बाबा उसका चिन्ह, आपको स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। मृत्युंजय भाई जी आपको प्रदान कर रहे हैं। और प्रसाद, प्रभु प्रसाद। और अब मेरा अनुरोध है हमारे बीच शिवा स्वामी जी और सॉरी शंकर प्रसाद शर्मा जी, आप आगे बढ़ेंगे सम्मान के लिए। और हम सब ये तालियां आज के दिन तो आकाश में गुंजायमान कर दें। भारत का तो सबसे बड़ा स्लोगन कहूं आतिथ्य देवो भव, यहाँ तो अतिथि सत्कार ही मुख्यतः होता आया है। बाबा के ये हम तो कहेंगे केवल अतिथि नहीं, प्रभु रतन है जिनका ये स्वागत कहें सम्मान कहें हो रहा है। आपको भी स्मृति चिन्ह माला और शॉल पगड़ी पहनाकर किया गया है। और अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री चित्रंजन चट्टोपाध्याय जी आगे बढ़ेंगे और सम्मान ग्रहण करेंगे आदरणीय दीदी जी से। शॉल माला पगड़ी पहनाकर आपका सम्मान, साथ ही साथ भ्राता जी शिव बाबा का प्रेम देकर के आपको सम्मानित कर रहे हैं ताकि ये प्रभु स्मृति स्वयं भी करें कराते भी रहें। और अब बारी है प्रभु प्रसाद की, वो ग्रहण करेंगे। सबका सम्मान होने के पश्चात अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच बीएस शिवा स्वामी जी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सीनियर साइंटिस्ट इंजीनियर एसएफ प्रोजेक्ट मैनेजर इसरो, मेरा आपसे अनुरोध है आप अपनी बात हमारे आगे रखेंगे और आपका योगदान विशेष जो इस समय अभी थोड़ा सा समय पहले चंद्रयान लॉन्चिंग जो हुआ था उसमें आपका विशेष योगदान रहा है। और ये तो सबको एक एक भारतीय को खुशी है, हमारा वहां पर चंद्रयान पहुंचा है, ये खुशी हम सब के अंदर है। आपसे अनुरोध है आप अपनी वाणी।
ओम शांति। गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द यूनिवर्स हु हैव गैदर्ड हियर इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ शांतिवन। एट द आउटसेट आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रह्म कुमारीज फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट सम ऑफ द अचीवमेंट्स डन इन द पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट एट योर इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर, from where I am coming here and standing in front of you. I just wanted to talk about Bharat. The Bharat name was not today's, it is almost centuries old. Most of the August audience who have gathered here know that Bharat is the father of Dushyanta and not the brother of Bharat. With this, I just want to tell about my proceedings towards the ISRO Satellite Center, your Rao Satellite Center it is called now, for the achievements which have taken place in this year. The first achievement was the successful launch of Chandrayaan 3. And the second achievement in this year itself is the launch of Aditya 1 spacecraft. Aditya means sun. Aditya is the Sanskrit name for the sun. I will talk first about the Chandrayaan. I want to tell that I am not much orator in the Hindi, so I will not be able to speak much about in Hindi, but I can speak only little on Hindi. So whenever I feel like I can talk. Otherwise, please excuse me, but I cannot talk in Hindi. The first launch of Chandrayaan was taken on 14th of July from Sriharikota Spaceport, and by using a rocket called LVM3. This rocket is GSLV, that is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. The weight of the rocket was around 600 kgs, and the rocket was carrying the Chandrayaan payload on the top of its 47 meter height rocket. The diameter of the rocket was around 3 meters, and there were three stages. The first stage is called strap-on stage. The strap-on stage was having a fuel of about 200 tons of solid propellant. The 200 tons of solid propellant was on the two sides of the rocket, which was having a propellant of high HTBT, that is polybutane and polybutane is the propellant, and nitrogen aluminum tetroxide was used as a propulsion system, as a oxidizer. So this was the first stage. The second stage was the liquid propulsion module, and the third stage was cryogenic. All of you know the cryogenic is the liquid oxygen and liquid nitrogen, hydrogen. The third stage, after the third stage, the equipment bay was there, and over that the Chandrayaan payload was assembled. Now I want to talk about the Chandrayaan spacecraft, which is having a weight of 3,900 kgs. This 3,900 kgs was launched using the LVM-3 launch vehicle. The Chandrayaan-3 are consisting of a propulsion module, a propulsion module of 2,148 kgs, and rover and lander. The lander name is Vikram, and the rover name was Pragyan. The lander and rover was sitting on the top of the propulsion module. The propulsion module itself was sitting on the equipment bay, and the rocket launching took place on 14th of July and injected the spacecraft into a 170 kilometers into 36,500 kilometers elliptical orbit. 170 kilometers is the shortest distance, and 36,500 kilometers is the longest distance. The shortest distance we call it as perigee, and the longest distance we call it as apogee, and it is a highly elliptical orbit, and this elliptical orbit was injected by the LVM rocket. So from this elliptical orbit, the propulsion module got separated from the rocket, and the propulsion module took almost 5 elliptical larger orbits to reach the moon. The moon is at a distance of 380,000 kilometers from the Earth. And from there, the propulsion module, along with lander and rover, lander name is Vikram, as I told you, and rover name is Pragyan, entered the lunar orbit, which took almost a month from the date of launch, and it traveled a distance of 380,000 kilometers and at a speed of 7 kilometers per second. I would like to place on records that none of the countries in the world has successfully launched their spacecraft to southern hemisphere of the moon. The southern hemisphere of the moon so far is almost having a temperature of about minus 270 degrees centigrade, and on 23rd of August 2023, the lander and the rover along with the Pragyan has started moving towards the moon at 100 kilometers above the lunar surface. The Pragyan and the lander, that is Vikram, was in a mothership, and the propulsion module took the spacecraft of lander and Pragyan to a distance of 100 kilometers, and from there the propulsion module got separated and the lander and rover was moving over 100 kilometers on the lunar surface. The propulsion module has orbiting on the lunar orbit of about 100 kilometers, and it is sending the signals from lunar orbit to Earth by its own payload called SHAPE. Now the lander and the rover, which is moving at 100 kilometers above the lunar surface, has started descending by its own propulsion system, and it started descending from 100 kilometers per second to the moon surface, and the speed was reduced to 2 meters per second. Now, after the main objective of the Chandrayaan 3 launch was to demonstrate that the spacecraft has to land softly. That means soft landing has to take place, and it has got four legs. The four legs had a legs with isolators, so that once it is landed on the moon, it properly stands there. Now, I wanted to tell you about the rover. The rover, which was inside the mothership of lander, has started moving out from the lander. That is, then it started moving over the moon surface, and it started moving slowly, and it has imprinted the ISRO logo on the moon surface. This is one of the another big achievement from the ISRO entity. Then afterwards, it has taken the pictures, in the sense it has got a payload. The payload has taken the pictures, and it has sent the information that there is the availability of sulfur, and there is the availability of other minerals, and also there is the availability of the water. Water presence was observed through our lander, and it has, from the Germanian scientists, they have told that this water presence in moon is due to the movement of electron from the Earth surface to the moon. This is how the water availability was there. Now I would like to talk my contribution at Euro Space Center. I am graduate in mechanical engineering and postgraduate in aerospace engineering from Indian Institute of Science, Bangalore. As project manager, I have handled 3 or 4 projects, but the important project what I have first done is, in the year of 1978 and 80, there was no communication from one country to other country, and the communication has to be done through the wires which are laid on the surface of the Earth as well as below the sea. So there was a requirement that the communication satellite has to be launched, and the requirement came from the Indian government. And as a member of the integration team, I was involved in the first communication satellite, which was actually launched by Ariane passenger payload. Ariane is the vehicle. At that time, ISRO's capability was not there to launch a heavy satellite of about 1,000 kgs. So there was an agreement between European Space Agency and our ISRO that A launch vehicle from European Space Agency will be given. That is called Ariane launch vehicle. And the payload will be from India. That is Ariane passenger payload experiment. It was the first three-axis stabilized satellite which was launched from European Space Center, French Guiana, Kourou on the East Coast. And from there, after the injection of the spacecraft into the near-Earth orbit, the Apollo spacecraft itself had its own propulsion module, and it has taken the spacecraft to geosynchronous orbit, which is about 36,500 kilometers away from the Earth. This 36,500 kilometers is required because we have to have a communication for almost 24 hours. In order to have a 24 hours coverage, and as all we know, the Earth is rotating, and the speed of the Earth and the speed of the satellite has to be coincided. That's why a 36,500 kilometer orbit is chosen to have a 24 hours coverage. I recently came in contact with the spiritual science as taught by God Himself at Brahma Kumaris chapter in our ISRO layout Bangalore is providing the same. Thereby, God is helping Bharat in special and world in general, thereby making Bharat the harbinger of peace in world. Om Shanti. Thank you all for my patient listening. Mera Bharat Mahan. Aap sab boliye, Mera Bharat Mahan. Thank you very much.
Bahut bahut shukriya. Brata B.S. Shiva Swami ji, aapne Bharat mein iske progress ke liye, unnati ke liye bahut yogdan diya hai. और इसके लिए आज आपको ज्वेल ऑफ भारत का अवार्ड भी दिया गया है. पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहती हूं. ट्रांसलेशन जो चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में, इंग्लिश 105, तमिल 9999, तेलुगु 89.5, कन्नड़ा 8888, हिंदी 103. और अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दे रही हूँ हमारे बीच विराजित ऑनरेबल मिसेस जस्टिस मंजू रानी चौहान जी. आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में कार्यरत हैं. आपसे अनुरोध है आप अपने विचार हमारे मध्य रखेंगे. कहा जाता है न्याय और अन्याय में थोड़ा सा ही अंतर होता है. न्याय से कश्ती पार होती है और अन्याय से कश्ती मझधार में डूब जाती है. आपको वो स्थान मिला हुआ है जो परमात्मा के बाद का है, जस्टिस. तो मेरा आपसे अनुरोध है आप अपने विचार.
बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम. अभी जैसे ही शुरुआत हुई तो ये हुआ हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए अलग अलग भाषाओं में उद्बोधन कर, अलग अलग तरह से उद्बोधन करते हैं, पर हम सब भारतीय हैं. भाषा माने नहीं रखती है, अंदर का प्योर सोल जिसमें शांति होती है वो माने रखता है. ऑल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स ऑन द डायस, ऑफ द डायस, ब्रदर्स सिस्टर्स, वन दादी इज देयर, ऑल दीदीज, ब्रह्म कुमारीज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबको मेरा फिर से प्रणाम. मुझे जब एक बार कुंभ हमारे यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ कुंभ होता है जो बहुत ही फेमस है। तो मुझे मनोरमा दीदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले मैं समझती थी क्या है ब्रह्म कुमारी, लेकिन उनसे मिलने के बाद वो पॉजिटिव वाइब्स जो आई वो मुझे यहाँ खींच लाई और आज मैं पहली बार यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मनोरमा दीदी से और सभी दीदियों से आशीर्वाद लेती हूँ कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बहुत ऑनर्ड महसूस कर रही हूँ कि यहाँ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे ही मैंने कैंपस में एंट्री ली, जो पॉजिटिव वाइब्स, जो पीसफुल वाइब्स, जो शांति हमें मिली, उसका हम शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है। हमारा भारत कैसे शांति के रास्ते से विश्व गुरु बने, दीदी ने बहुत कुछ बताया कि कुछ नया नहीं है। हमारी हिस्ट्री, ओल्ड स्कूल, हमारे ग्रंथ सब हमें शांति की ओर ही इशारा करते हैं। पर उन ग्रंथों को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक मार्गदर्शक चाहिए जो किताबी ज्ञान न दे। तो किताबी ज्ञान के लिए तो हम स्कूल जाते हैं, पर हमारे प्योर सोल को प्योर करने के लिए जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, शायद ये सबसे, मैं तो बहुत जगह गई हूँ लेकिन शायद ये सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छा प्रांगण है जो हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। स्पिरिचुअलिटी क्या है मैं बहुत नहीं ब्लेसिंग्स दे पाऊंगी क्योंकि मैं खुद यहां ब्लेसिंग्स लेने आई हूं। और जैसा कि कहा कि वेलकम सॉन्ग ही हमारा बताया, हमारे जो एंकर हैं उन्होंने बताया, दीदी ने बताया कि हमारा जो मंत्र शुरू होता है तो वो भी शुरू होता है देवो शांति पृथ्वी शांति। तो सब जगह शांति कैसे आए? जो अभिनंदन गीत हुआ उसी का मैं सेकंड पैरा फिर से पढ़ना चाहूंगी कि मुझे जब वो गा रहे थे तो लग रहा था कि मैं आंख बंद करके मेडिटेशन में जा रही हूं। आज की आवश्यकता है सब में हो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता राजयोग से हो सुख शांति पवित्रता। अज्ञान के परम स्रोत ने आपको दिया निमंत्रण। अब यहां पे सुख शांति पवित्रता ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लेकिन मेन क्रक्स है ये शांति कहां से आए। देखिए किसी भी व्यक्ति, समाज, देश में परिवर्तन इसी स्पिरिचुअल नॉलेज से लाया जाता है। और ऐसी ही संस्थाएं जिनसे हम जुड़ते हैं वो हमें उस स्पिरिचुअलिटी से, हमारे प्योर सोल से कनेक्ट करते हैं जो मुझे ज्ञान देता है, जो सुपरफिशियल नहीं होता। जो अंदर है वही बाहर है, वो आपका व्यक्तित्व में दिखाई पड़ने लगता है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज में वो शांति आपको नहीं अभी आएगी, जब मैं बिल्कुल इन लोगों से जुड़ जाऊंगी। तो देखिए जब बोलते हैं जो स्वीट वॉइस निकलती है उससे कितना लगता है, सूदिंग सा लगता है। मेरी आवाज में अभी कड़कपन है। तो जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज इन लोगों के माध्यम से लेंगे तो मुझे शांति मिलेगी। हमारे मन में उथल पुथल कब होती है? जब हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। सही और गलत में फर्क हम कब कर पाएंगे? जब दीदियों के द्वारा जो समर्पण सेवा की भावना है, जो समानता है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है ये ऊपर वाले का है। आपको परमात्मा है, आपका टुटकियां हैं, परमात्मा ने आपको नीचे भेजा है अपना अपना काम सौंप कर। यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट आया होगा जिसमें उन्होंने सेवा भाव से किसी की जिंदगी बचाई होगी, क्या वो बड़ा कार्य नहीं है? कुछ का दिखाई दे जाता है, हमको आप डायस पे देख रहे हैं, वो भी परमात्मा ने मैंने बैठाया है इसलिए कि उनको मेरे माध्यम से कोई काम कराना है। ये मैंने सोचा कि शायद लीगल टर्मिनोलॉजी में हम, चूंकि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो पीस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जहां वॉर या वॉयलेंस की स्थिति ना हो, ऐसा पीरियड जहां वॉर और वॉयलेंस की स्थिति ना हो। तो हम जब समानता की बात करते हैं तो हमारे ब्रह्म बाबा जी के सोच में ये बात शायद पहले आ गई थी कि जब लाइफ में किसी को कोई ऐसा झटका लगता है तो सोचता है कि हम शांति कैसे ढूंढें। किसी ने मुझे यही बताया कि ब्रह्म बाबा की लाइफ में भी, भाई वो ज्वेलर थे शायद, और उनकी लाइफ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट आया कि उनके किसी गुरु ने उनको फोन किया, जहां वो जिनको वो मानते थे, कितना सच है दीदी मैं नहीं जान रही हूँ लेकिन मैंने किसी से सुना है ये, तो उन्होंने उनको फोन करके कहा कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है क्योंकि मेरे एक शिष्य ने जुआ खेल लिया और वो जुए में 10,000 रुपए हार गया, तो आप दे दो तो मैं उसको दे देती हूँ। वहीं उनको ये लगा कि मैं ऐसा गुरु क्या मानूं जो अपने शिष्य को, जिसका शिष्य जुआ खेल रहा, और शायद वहीं से ये नींव की शुरुआत हुई जो हम लोगों का सौभाग्य है कि इतना बड़ा शांति वन है और जाने कहां कहां पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स में इनकी गूंज है, वो वाइब्स हर जगह आपको दिखाई देते हैं। पुराने में मैंने कहा जैसे गौतम बुद्ध जी को भी जब उन्होंने देखा ये मृत्यु है तो वो भी अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए उन्होंने कहा अब हम अध्यात्म की ओर जाएंगे। तो सम एंड सब्सटेंस में हमको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ही जाके अपने समाज अपने देश को आगे बढ़ाना है। जब मैं यहाँ एंटर करी तो मैंने देखा, मुझे पहले भी पता था कि ब्रह्म कुमारी में ये वाइट हम लोग पहनकर आते हैं, पहले से ही सुना है शांति का प्रतीक होता है, तो घुसते ही पहली चीज क्या दिखती है, आदमी की पर्सनालिटी। बाद में आप उनको सुनेंगे या उनसे मिलेंगे या ओम शांति कहेंगे तो देखते ही श्वेत वस्त्र, मन में शांति मिलती है। तो तब मुझे समझ में आया कि दिस इज द चॉइस। हम एक और चीज ऐड ऑन करना चाहेंगे कि कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां शांति रहती है, और ये ब्रह्म बाबा जी के जहन में आया, उन्होंने सौंपा ये हमारी दादियों को और दीदियों को, और देखिए उनकी सोच कहां तक आएगी, अब हम लोग 33% कोटे में आ गए। बहुत पीस का एक और मतलब होता है डिसिप्लिन। मैं अपने टाइम से अगर ज्यादा बोल रही हूं तो मैं कट शॉर्ट कर दूं। एक लाइफ का और इंसिडेंट मैं सुनाना चाहूंगी क्योंकि प्रैक्टिकली जितना हम कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से वो शायद किताबी ज्ञान से नहीं है, जो दीदी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे शायद मैं ज्यादा समझ पाई। जहां नारी सम्मान की बात आती है तो पहले टाइम लड़कियों को नहीं, लड़कियां होती थी तो भाई बड़ा रोना पिटना मचता था और बेटे होते थे तो लड्डू बढ़ते थे। तो एक रियल स्टोरी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और वो रहा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जो ये मतलब ये सत्य बात मैं बता रही हूँ जो माता श्री ने स्वयं शेयर किया। 3 पुत्रियां हुई, चौथी के लिए एडमिट हुई हॉस्पिटल में, और ना उनके मायके वालों ने सपोर्ट किया और ससुराल वालों ने सपोर्ट किया, और ये कहा अगर चौथी पुत्री हुई तो या तो उसको आप कहीं वहीं छोड़कर आइएगा या घर नहीं आइएगा। अब इस स्थिति में आप मनोदशा समझ सकते हैं। चौथी सौभाग्य से मैं कहूंगी पुत्री ही हुई, बहुत ठंडी का सीजन था, शायद वो मां अध्यात्म से नहीं जुड़ी थी, लेकिन एक दृष्टिकोण उस नई न्यू बॉर्न बेबी ने दे दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं थी और वो कहीं से सपोर्ट नहीं था, तो वो उस बच्ची को लेके तो गई, मारते तो नहीं बना, लेकिन उसे नर्वस्त वहीं छोड़ दिया बाहर घर से थोड़ी दूर। आप इमेजिन करिए बिल्कुल ठंड में न्यू बॉर्न बेबी बिना वस्त्र के घर चली गई। मन नहीं माना, सुबह उठी गई देखने, बच्ची नीली पड़ी थी लेकिन जिंदा थी, और वहां से शायद एक नेचुरल आत्मज्ञान जो भी आया हो कि जब ये एक दिन की बच्ची अपनी जिंदगी के लिए लड़ सकती है तो मैं, आत्मज्ञान मुझे मिल गया है कि मैं उस बच्ची के लिए क्यों ना लड़ूं। और उसने उस बच्ची को गोद में उठाया, कहा कि तुम मार पीट के निकालो तो। और मुझे उस बच्ची से मुलाकात कब हुई कि हम लोग हमारे यहाँ प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी बहुत दर्शन करने हम लोग जाते हैं, तो मैं दर्शन करने गई थी, तो हम लोग आगे थे और बहुत भीड़ थी, उस दिन कोई पर्व था तो उसको दर्शन नहीं मिल रहा था, और लिटरली वो आंसुओं में थी वो माँ। उसने कहा मुझे अपनी इस बच्ची को दर्शन कराना है, तो मैंने कहा इतना आप क्यों है। तो उसने ये दृष्टांत बताया और कहा कि आज यही है कि जो लोग उसको कह रहे थे कि मार के आना, बाकी तीन की शादी हो गई, इसने कहा नहीं, मैं अपने पेरेंट्स की सेवा करूंगी। तो कहते हैं कि जो अंदर है वही बाहर रखिए, सब समान है। और ऐसे ही लोगों के सानिध्य में मेरे ख्याल से दुनिया कहां से कहां हो जाएगी। और हम देख रहे हैं हमारे G20 समिट ने दिखा दिया कि भारत शुरू से सैक्रिफाइसेस किया, हमारे कितने वॉरियर्स मारे गए। क्या हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम अटैकिंग मूड में आ जाएं? हैं। हम जब कारगिल गए तो वहां उन्होंने कहा कि हमें आदेश तो मिले, मार गिरा देंगे, लेकिन ये हुआ कि हम शांति से जितनी अच्छी चीजें कर सकते हैं। और इसीलिए रूस यूक्रेन वॉर में भारत को क्यों इम्पोर्टेंस दी गई, उनका सजेशन क्यों माना गया, क्योंकि हम शांति दूत की तरह हैं। और वो दिन दूर नहीं कि हमारा परचम लहराएगा शांति से। आप चाइना से देख लीजिए, पाकिस्तान से देख लीजिए, क्या हम लोग देखिए कहां पहुंच गए हम लोग। पहली बार अभी लेटेस्ट जो अचीवमेंट हम लोगों को हुआ चंद्रयान वाला, तो क्या हम इतने स्ट्रांग नहीं है? पर जो एक्सपीरियंस बताता है, जो ब्रह्म कुमारी में आके मैंने और समझा कि इससे सरल और कठिन, मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रही हूं, क्योंकि जो बिल्कुल झुक गया कि मुझे ज्ञान लेना है उसको ज्ञान है, जो ऊपर ऊपर दिखावे में रह गया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह गया, हाय बाय में रह गया, वो कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। वो फेज आपका टेम्पररी फेज होता है। आज मैं गुमान से चलूं, मेरे साथ गार्ड्स चलते हैं, कल रिटायर हो जाऊंगी तो वो मेरी शान, जो मेरा सबसे विचार है, जो सबके प्रति रिस्पेक्ट है, आज भी कुर्सी में रहते हुए शायद वही लोग याद करेंगे। वो गार्ड और सल्यूट किसी को नहीं याद रहेगा, कुर्सी से उतरते ही सब गया। मैं शायद अब मेरा कहते अपना चाल चरित्र चिंतन और चेहरा, ये चार चीज हैं जिसको डेवलप करना है और शांति मिलती है। ये वाला पार्ट मैं फिर आपसे सब लोगों से कहती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स लेने आई हूँ, इसलिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और लीगल प्रोफेशन में भी ये हो गया है कि मुकदमे से नहीं है, हम लोग आर्बिट्रेशन के लिए कहते हैं, बैठ कर समझौता कर लीजिए। मीडिएशन के लिए कहते हैं, बैठ के समझौता कर लीजिए, मुकदमेबाजी से हल नहीं हो रहा है। तो इवन इन लीगल प्रोफेशन वी आर गोइंग इन दैट पॉजिटिव डायरेक्शन दैट पीसफुली इफ यू कैन सिट टुगेदर ऑन द सेम टेबल यू विल गेट अ सॉल्यूशन टू दैट। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मनमोहन दीदी को स्पेशली कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे यहाँ आने का, और हम यहाँ पे एक परिवार के रूप में आए हैं, एक छोटी बहन के रूप में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय जस्टिस मंजू रानी चौहान जी, आपने बहुत सुंदर अपने मनोभाव रखे। और अब मैं आगे बढ़ते हुए कहना चाहूंगी, भारत तो योग और ध्यान के लिए ही प्रसिद्ध है, विश्व की शांति कैसे होगी उसकी दिशा में मार्गदर्शन भारत योग और ध्यान के रूप में करता आया है। मानसिक शांति, आत्मिक संयम ये योग शिक्षा देता है। और जब हम अपनी समस्याओं से बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं, स्वतः और स्वाभाविक हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाता है, प्रार्थना की ओर जाता है। कैसे भी करके वो कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए उसके लिए हम आह्वान प्रभु को करते हैं और मन को शांत करते हैं। तो चलिए हम भी उस ओर बढ़ते हैं। और मैं आमंत्रण देना चाहूंगी राजयोगिनी पुष्पा देवी जी को, जो कि दिल्ली करोल बाग पांडव भवन की डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ की जो जूरिस्ट विंग है उसकी आप वाइस चेयरपर्सन हैं। आपको शक्ति लाइफ टाइम अवार्ड मिला हुआ है, ऐसे अन्य और भी अवार्ड मिला हुआ है। आप बाल्यावस्था से ही इस राजयोग का अभ्यास, इसके लिए आप जुड़े हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, वो ध्यान, वो योग, वो तप कैसे करें, मन को शांत कैसे करें, इस दिशा की ओर ले चलें।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय वक्तागण, सभा में उपस्थित सभी आमंत्रित मेहमान, रूहानी स्नेही भाइयों और बहनों, हम सभी शांति प्रिय प्राणी हैं। और ये हमारा कितना सौभाग्य है कि जब भी किसी देश में, विश्व के किसी कोने में शांति की चर्चा चलती है तो अवश्य ही भारत की चर्चा होती है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश रहा है जो सदा ही अध्यात्म प्रधान है। और एक समय था जब सारा विश्व भारत कहलाता था, और इसीलिए क्योंकि एक मत, एक राज्य, एक भाषा, उस समय हम सब इस धरती पर जो प्राणी थे वो शांति से संपन्न, पवित्रता से संपन्न थे। और इसीलिए सभी प्रकार की संपन्नता थी। हम पहले भी आदरणीय जयंती दीदी जी के द्वारा इसका विस्तार बहुत अच्छी तरह सुना और यहाँ तक कि धीरे धीरे परिवर्तन आते हुए भी 70वीं शताब्दी तक भी भारत विश्व से 2-3 गुना अधिक संपन्न था। भारत ने अनेक कार्यों में आविष्कारों में पहल की है। भारत की मैथमेटिक्स आदि ने निमित्त बनी साइंस के कई आविष्कारों में। प्रसिद्ध एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि मैं भारत का आभार मानता हूँ कि इसकी गिनती ने ही भारत के इस गणित ने कई आविष्कार साइंस के कराए। और आज हम सब देख रहे हैं कि भौतिकता किस गति से फास्ट अति तक पहुंचती जा रही है और अब प्राणी के मन में वही फिर से एहसास आता है कि जीवन में शांति चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव भी हम मानव के प्राणी के जीवन में देख रहे हैं किस प्रकार का पड़ रहा है। तो क्यों नहीं हम बहुत अधिक सोचते हुए हम अपने जीवन की वास्तविकता को अवश्य जान लें। प्राणी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता जा रहा है, परंतु जो हमारे जीवन की सच्चाई है, जब तक हमने उसको नहीं पहचाना तो हम कैसे जीवन में वे सच्ची शांति पा सकेंगे। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है, परमात्मा जो इस विश्व के परम पिता हैं, हम सब उनकी संतान हैं, और ऐसे दुख अशांति के वातावरण को जब मानव का हृदय अंदर से अनेक बातों को सुनते कांप उठता है, तो शांति के सागर, क्षमा के सागर, रहम के सागर, त्रिकालदर्शी पिता स्वयं इस भारत धरनी पर ही अवतरित होते हैं। ये भी हम सबका कितना सौभाग्य है कि हम सबके लिए ही और भारत के द्वारा सारे विश्व के लिए ही शांति हो जाए। अब जो परमाणु युग है वे पुरुषोत्तम युग है, जब परमात्मा धरती पर आते हैं और हमारे ही गुणों की हमें पहचान देते हैं। आत्मा तुम मेरी संतान हो, मैं शांति का सागर हूँ और तुम उस गुण की, स्वधर्म की अधिकारी आत्मा हो, शांत स्वरूप हो। तो मैं और अधिक न सुनाती हुई इन 3 दिनों में यहाँ पर आप ऐसी बहुत सारी बातें सुनते रहेंगे और भारत का जो प्राचीन राजयोग सारे विश्व में इसकी चर्चा होती है, उसकी ही शिक्षा परमात्मा स्वयं हम सबको देते हैं कि आप मेरी संतान होने के नाते मेरे साथ आपका संबंध है। इस संबंध को ही जोड़ना योग कहा गया है और जिससे ही हमारे जीवन में हम सभी कर्म इंद्रियों के राजा बनकर सहज शांत रह सकते हैं। तो चलिए अभी कुछ मिनट ऐसा ही हम अनुभव करें। यहाँ आप शांति वन में बैठे हैं, चारों ओर शांति के ही वाइब्रेशंस हैं और हम वासी भी वास्तव में शांति के देश परम धाम शांति धाम के हैं और पिता भी हमारा शांति का दाता शांति का सागर है और मैं भी स्वयं में आत्मा अंदर से शांत स्वरूप हूँ। इन तीनों ही बातों को आप बुद्धि में रखिए और अपने मन को संकल्प को ले चलिए अपने पिता के पास, जो सुनेंगे उसे दिल में समाइए, उसका एहसास कीजिए। यह संसार बदल रहा है, शांति की ओर जा रहा है। मैं भी स्वयं को आत्मा बदल रही हूँ। एक शांति की दुनिया की ओर सुख की दुनिया की ओर वही मेरा शुद्ध संकल्प है। मुझे शांत रहना है, शांति ही मेरा निजी स्वभाव है। इसीलिए मुझे शांति पसंद है। मेरे शांत रहने से वातावरण शांत होगा, परिवार शांत होगा, हर एक परिवार से समाज में शांति आएगी। और एक नया युग शांति का इस दुनिया में आएगा। शांति का युग, सुख का स्वर्णिम युग। हम उसमें चल रहे हैं। स्वयं भगवान हम सभी को यह वरदान दे रहे हैं। हे प्रिय आत्मा, तुम सुख शांति संपन्न हो। और मुझसे सदा के लिए अपना ये अधिकार सुख और शांति का प्राप्त कीजिए। ओम शांति, ओम शांति।
लगता है ऐसे ही शांति बनी रहे तो कितना अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय पुष्पा दीदी जी का। और अब हम आगे बढ़ते हुए भारत भूषण जी की ओर बढ़ रहे हैं, जो धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे आप ज्ञान मानसरोवर पानीपत के निदेशक हैं, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी की साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर, और आपके अंडर में बहुत सारे सेवा केंद्र, 51 सेवा केंद्र और 400 गीता पाठशालाएं चलती हैं। आपके पास भी राज्यों का गहरा अनुभव है। मेरा आपसे अनुरोध है आप धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे आदरणीय भारत भूषण भाई जी।
ओम शांति। धन्यवाद करते हुए उस परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा और पिता श्री ब्रह्मा बाबा, व्यक्त बाबा, और हमारी दादियां दादी रतन मोहिनी जी, उन सब का धन्यवाद करते हुए मंच पे आसीन सबसे पहले हमारी जयंती दीदी जी, जो इस इंटरनेशनल संस्था के एडिशनल चीफ हैं, और आपका एक पांव वेस्ट में रहता तो एक पांव ईस्ट में रहता, लगभग 6-7 मास आप उधर सारे विश्व के सेंटर संभालते और 5-6 मास भारत को भी मिलता आपका, जो जगह जगह सारे इंडिया भर में प्रोग्राम चलते। अभी भी 4-5 मास से आप विश्व भर की सेवाएं पूरी करते हुए इस ग्लोबल समिट के निमित्त अब आप पधारे हैं यहाँ पर, आपका दिल की गहराइयों से खूब 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 धन्यवाद करता हूँ। एक एक मिनट मैं कहूँ, आप सचमुच पूर्णतया सफल कर रहे हैं अपना कनेक्शन जोड़ के, और लाखों आत्माओं को आप एक उसके प्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक ही आपने फरमाया कि भारत इस वक्त विश्व में किस तरह साहब की नज़र भारत पर है। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो साइंटिस्ट इंजीनियर भ्राता बीएस शिवा स्वामी जी, कमाल है, वंडरफुल, कितना आपका धन्यवाद करें। 14 जुलाई 2:35 पर चंद्रयान चला, ये क्या वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स का कमाल, इतना इन्वेंशन, एग्जैक्ट 6:04 पे वो जाके 23 अगस्त को उसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, बिल्कुल फर्क नहीं हुआ, कितना कमाल किया। उस वक्त सारा विश्व देख रहा था और दिल था कि उस टीम को जाके हम उन पर पुष्प अर्पण करें। उस टीम में से एक हमारे सामने मृत्युंजय भाई निमित्त कॉन्फ्रेंस के ले आए हैं, तो उनका हम खूब खूब तालियों से धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है आपका सहयोग मिलने से ब्रह्मा कुमारी दीदियां, सब भाई बहनें, 12 लाख भाई बहनें भी इस धरा पर स्वर्ग उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपका सहयोग मिलेगा तो जरूर वो सपना साकार हो ही जाएगा। नेक्स्ट मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जस्टिस मंजू रानी चौहान जी से कि आपने अपनी ठीक जजमेंट दी कि परिवर्तन अगर होगा तो स्पिरिचुअलिटी से होगा, एक ही माध्यम है। तो आप दीदियों के प्रति आपकी कितनी भावना और प्रैक्टिकल, आपने व्हाइट ड्रेस को बहुत अप्रिशिएट किया और खुद भी व्हाइट ड्रेस में आई हैं, आप सबका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी, नेपाल के एम्बेसडर। आप देखेंगे सभा में बहुत नेपाली भाई बहने भी आए हैं, जरा हाथ खड़ा करें नेपाली भाई बहने, देखो कितना, आपके आने से हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, इसलिए आपका भी हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पुष्पा दीदी जी, जो कि राजयोग के माध्यम से बिल्कुल कितना सन्नाटा छा गया, आपने सचमुच शिव बाबा की अनुभूति सबको करा दी, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता, कितना सुंदर बताया डिस ईज, ये सब रोगों का कारण क्या है, कारण और निवारण बड़ा सुंदर आप बताते हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने चित्रंजन चट्टोपाध्याय जी, जो कि कितना सुंदर उन्होंने महात्मा गांधी का कोट किया, वर्ल्ड हैज एनफ फॉर इट्स नीड नॉट फॉर ग्रीड, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। और सबसे अंत में सारे भारत से और नेपाल से और दूर दूर देश से और देशों से भी आप सब पधारे हैं इस विश्व शांति सम्मेलन, इस ग्लोबल समिट में, आपका भी खूब 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 धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मैं केवल अंत करना चाहूँगा छोटी सी बात से, लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं, छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारियाँ सफ़ेद वस्त्रधारी कहते हैं धरा पर स्वर्ग लाएंगे, धरा पे स्वर्ग लाएंगे, ऐसा शांति का साम्राज्य लाएंगे, क्या ये पॉसिबल है क्या? जिनको भी निमंत्रण देते हैं ये बोलते हैं, तो पॉसिबल है। एक छोटी सी एक मिनट की कहानी से आप समझ जाएंगे, एक जंगल में आग लग गई, आग लग गई तो एक चिड़िया क्या किया, एक सरोवर था उससे चोंच भरा और वहां जाके डाला, फिर भरा फिर डाला, इतने लगभग 40 हाथियों का समूह आया और वो पानी पीने के लिए सब पानी पी रहे थे। देखा चिड़िया दीदी क्या कर रही है, कि मैं वो देखो आग लग गई है, और फिर चोंच भरा चलने लगा, सब जोर से हंसे कि तेरी इस चोंच से क्या आग बुझ जाएगी क्या, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी, फिर चोंच भरी और फिर उड़ते हुए कहा मुझे नहीं पता आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, परंतु जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा ना कि लगाने वालों। सबको बहुत लज्जा आई कि क्या फर्ज क्या बनता है, सबने अपनी सूंडे भरी और वो भी जहां आग शुरू हुई थी लगने डाला, फिर डाला फिर डाला, आग बुझ गई। किसने बुझाई आग, किसने बुझाई, चिड़िया ने नहीं बुझाई तो हाथियों ने, लेकिन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी चिड़िया। तो ये हमारी छोटी छोटी बहनें, बड़ी दीदियां या दीदियां जितनी हैं, ये भी वो चिड़िया के समान है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और आप सब वो हाथी थे, आप सब महारथी आए हैं, आप सब जुड़ जाएंगे ना अवश्य ही विश्व में शांति आ जाएगी और सचमुच धरा पर स्वर्ग आएगा। धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भारत भूषण भाई जी का, हम स्रोत बने सत्युग लाने में। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सभी बैठे रहें। मैं आगे बढ़ते हुए धन्यवाद करने वाले भारत भूषण भाई जी का भी धन्यवाद करती हूँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभा में मैं एक बहुत सुंदर जानकारी दे रही हूँ कि आप सबको अभी यहाँ से ईश्वरीय सौगात मिलेगी। दो चीजें हैं, एक है नोटबुक और पेन और दूसरी तरफ है लक्ष्मी नारायण का चित्र। आप दोनों में से एक ले सकेंगे, दोनों में से एक ले सकेंगे। और अब हम सब दो मिनट प्रभु स्मृति में बैठकर इस सत्र को यहीं समाप्त करेंगे।
दिव्य गुणों के गुरुदेव
ओम शांति।